वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के बुधवार के गीतामृत कार्यक्रम में। दूसरा अध्याय चल रहा है, सांख्य योग का दर्शन भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। और पिछले हफ्ते हमने सुना, भगवान ने अर्जुन को एक बुद्धि युक्त मनुष्य, उसके लक्षण क्या होते हैं, जिसे संस्कृत में कहते हैं मनीषिणः, उसका उल्लेख किया। और अंततः जो मनीषिणः, जो कि बुद्धि से युक्त है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो पदम पद को कैसे प्राप्त करता है, अर्थात वो भगवान के नित्य धाम को कैसे प्राप्त करता है। तो फिर अर्जुन का अगला प्रश्न भगवान श्री कृष्ण को ये रहा कि आपने उसके लक्षण तो बता दिए, लेकिन आपके धाम में पहुंचने के लिए या उस परम पद को प्राप्त करने की योग्यता क्या उसकी होनी चाहिए। तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, वो है हमारे आज का श्लोक। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो बुद्धि से मोह रूपी घने जंगल को पार कर लेता है, मोह कलिलम, बुद्धि से जो मोह रूपी घने जंगल को पार कर लेता है, उसके लिए श्रोतव्यस्य श्रुतस्य, सुना हुआ और सुनने योग्य, उसके लिए वो उदासीन हो जाता है, अर्थात ही बिकम्स इनडिफरेंट टू ऑल दैट इज हर्ड, ऑल दैट इज टू बी हर्ड। वन हु हैज क्रॉस्ड द डेंस फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन बाय वंस इंटेलिजेंस। तो ये आज के श्लोक का अनुवाद है। तो आज हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। पिछले श्लोक से आज के श्लोक का क्या संबंध है, भगवान आज मोह की तुलना एक घने जंगल से कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में गुरु शब्द पर महत्व दे रहे हैं। तो गुरु शब्द की क्या व्याख्या है, भगवान ने निर्वेद शब्द भी इस्तेमाल किया है, तो उसका क्या अर्थ है, और श्रुतस्य श्रोतव्य शब्दों की व्याख्या, और अंततः आज के श्लोक में भगवान ने दो विपरीत मुद्दों को प्रस्तुत किया है, अपीयरिंग टू बी कॉन्ट्रडिक्टरी, दो विपरीत मुद्दों को, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए समझना कि भगवान ने विवादस्पद अर्थात कॉन्ट्रडिक्टरी मुद्दों को क्यों अर्जुन के सामने प्रस्तुत किया। तो शुरुआत करते हैं पिछले श्लोक से, संबंध आज के श्लोक का। पिछले श्लोक में भगवान ने परम धाम की प्राप्ति के विषय में अर्जुन को बताया, पदम गच्छन्त्यनामयम, कि वो परम पद को एक बुद्धि युक्त मनुष्य प्राप्त करता है। और आज के श्लोक में परम धाम प्राप्ति की योग्यता अर्जुन को भगवान बता रहे हैं। तो यहां पर भगवान ने कहा यदा ते मोह कलिलम, तो संस्कृत का यह शब्द है मोह, जिसका हिंदी अनुवाद है अंधकार, एक अनुवाद है ये डार्कनेस। जैसे अक्सर हम भारत में ये मोह माया, सुनते ना, मोह माया में जीव फंसा हुआ है। तो ये मोह माया का अनुवाद है अंधकार या डार्कनेस। और कलिल ये भी एक और संस्कृत का शब्द जिसका अर्थ है घना जंगल, डेंस फॉरेस्ट। तो अब यदि भगवान ने ये मोह कलिलम शब्द इस्तेमाल किया है तो मोह रूपी घना जंगल, मोह कलिलम का अर्थ क्या हुआ, मोह रूपी घना जंगल। तो यदि हम आपसे प्रश्न पूछें कि इसमें अंधकार कहां आ रहा है, डार्कनेस कहां है, क्योंकि मोह का हमने एक अर्थ क्या लिया था, अंधकार। तो भगवान यहां पर मोह कलिलम कह रहे हैं, तो कैसे हम कह सकते हैं, ठीक है डेंस फॉरेस्ट समझ गए, घना जंगल, लेकिन घने जंगल का अंधकार से क्या संबंध है यह बताया गया है कि कई बार जंगल इतने घने होते हैं कि सूर्य की एक किरण भी उस जंगल की धरती तक नहीं पहुंच सकती, ऐसे ऐसे घने जंगल होते हैं, नॉट इवन अ रे ऑफ सन कैन रीच द बॉटम ऑफ द फॉरेस्ट। सूर्य है लेकिन घने जंगल की वजह से सूर्य की रोशनी वहां पर मौजूद नहीं दिखाई देती। तो भगवान ये कह रहे हैं कि उस जीव के अंदर मेरे धाम में जाने की शक्ति है और वो शक्ति की तुलना उस प्रकाश, उस सूर्य की किरण से कर रहे हैं भगवान, लेकिन घना जंगल, इट इज कवर्ड बाय थिक फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन। तो वो अंधकार वहां पर प्रस्तुत हो रहा है घने जंगल के वजह से। तो मोह कलिलम का अर्थ है कि इस मोह रूपी अंधकार के वजह से जीव उस बुद्धि को नहीं देख पाता जो कि उसे आध्यात्मिक संसार तक पहुंचा सकती, ये इसका अर्थ है। तो अब हमारे आचार्य मोह के दो और अर्थ बताते हैं, एक अर्थ है भ्रम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इल्यूजन या डेल्यूजन, और दूसरा अर्थ है आसक्ति, अटैचमेंट। अब क्या दोनों एक दूसरे के सहायक शब्द हैं या विरोधी शब्द हैं, भ्रम और आसक्ति, इल्यूजन एंड अटैचमेंट। इस भौतिक संसार में हम देखें कई बार कोई व्यक्ति बहुत आसक्त होता है किसी चीज से तो वो डार्कनेस में चला जाता है, उस आसक्ति के वजह से बिकम्स काइंड ऑफ ब्लाइंड। इसलिए संस्कृत में मोह के साथ एक और शब्द कई बार इस्तेमाल हुआ है और वो है मोहांध, मोह से अंधा। तो इस भौतिक संसार में यदि हम देखें तो कई बार आसक्ति इतनी होती है किसी में, किसी व्यक्ति में या किसी वस्तु में, पैसों में ले लीजिए, कि व्यक्ति उसके वजह से अंधा हो जाता है। जैसे अंग्रेजी की कहावत है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, मतलब वहां पर अर्थ यह है कि फेयर एंड अनफेयर लव एंड वॉर में समझ में नहीं आता, क्योंकि दोनों में बहुत इंटेंस एक इमोशन होता है, लव एंड वॉर में दोनों में इंटेंस इमोशन होता है, तो वो एक प्रकार का ब्लाइंडनेस कहा गया है, एक प्रकार का अंधापन कहा गया है। इसलिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी एक सुंदर श्लोक में कहते हैं पश्यन अपि न पश्यति, कि एक ऐसा अंधापन है कि आंखें हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखते हुए अनदेखा कर देना, हाँ कितनी बार होता है ना, हम देख रहे हैं लेकिन हमारी मन की आंखें और कुछ देख रही हैं, और मन की आंखें जो देख रही हैं हम वहां पर मौजूद हैं, जो ये चर्म चक्षु हमारे हैं दिस फ्लैशी आईज, वो जो देखती हैं वो निर्भर करता है कि हमारी अंदरूनी मन की आंखें वहां पर मौजूद हैं कि नहीं। तो यदि अंदर की हमारी अंदरूनी आंखों के ऊपर मोह का पर्दा है तो फिर ये बाहरी आंखें भी वही सब देखेंगी। जैसे वो एक कथा है कि एक परिवार में पिताजी बहुत कंजूस, एकदम कंजूस पिताजी, जिसे कहते हैं ना कौड़ी चुंबक, चुंबक की तरह कौड़ी से चिपके हुए, तो उनके पुत्र बहुत प्रयास कर रहे थे कि अभी इनकी उम्र हो गई है, वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, अब तो कम से कम छोड़ें कौड़ी को, पैसों को। तो साधु को बुलाया, साधु से कहा कि इनको तीर्थ यात्रा के लिए ले जाओ। तो साधु उनको तीर्थ यात्रा के लिए ले गए और कहा बनारस, बनारस में है मणिकर्णिका घाट जहां पर मुर्दों को जलाया जाता है, ताकि एकदम मुर्दों को जलता हुआ देखेंगे तो अंदर कुछ वैराग्य उत्पन्न होगा। तो देख रहे हैं हर 5 मिनट में एक मुर्दा आ रहा है, जल रहा है, आ रहा है, जल रहा है, आ रहा है, जल रहा है, रोने लगे। साधु को लगा बात बन रही है, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, कभी जिंदगी में इतने आंसू नहीं बहाए। तो साधु फिर पूछते हैं दिन के अंत में, तो फिर क्या साक्षात्कार आपका? मैंने जीवन व्यर्थ गंवा दिया। हाँ बहुत अच्छा, और क्या आगे बताओ। जीवन व्यर्थ गंवा दिया कपड़ों के धंधे में, लकड़ी का धंधा करता तो कितने पैसे कमाता है। तो इसे कहते हैं मोहांध, कि वहां पर मुर्दे जल रहे हैं लेकिन उसको बस वही ख्याल है कि वहां पर पैसे कितने मिलेंगे। तो यदि हम अब अंधेपन की व्याख्या करें तो अंधेपन की व्याख्या दो तरीके से हुई है। एक अत्यधिक अंधकार के वजह से दिखाई नहीं देता और एक अत्यधिक प्रकाश के वजह से भी दिखाई नहीं देता। तो यहां पर भगवान क्या बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम ये जो अत्यधिक विरक्ति की बातें कर रहे हो ना, ये भी एक अंधापन है तुम्हारा। अत्यधिक विरक्ति और अत्यधिक आसक्ति, ये दोनों अंधापन है। इसलिए यदि साइंस के अनुसार हमें कोई वस्तु को देखना है ठीक से, इफ देयर इज टू मच लाइट वी कांट सी, है ना, बोलते ना ब्लाइंडेड बाय लाइट, ब्लाइंडिंग लाइट, एंड इफ इट इज टू डार्क वी कांट सी, देयर हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ बोथ, देन वी कैन सी प्रॉपरली। इसलिए भगवद गीता का सिद्धांत क्या है? बैलेंस, नॉट टू एक्सट्रीम, न तो यहां न यहां, बैलेंस। तो अर्जुन यहां पर विरक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं कि मुझे बिल्कुल कुछ नहीं सरोकार इस युद्ध से, सब कुछ मैं ऐसे दे दूंगा दुर्योधन को, और मुझे यदि भीख भी मांगनी पड़े तो मैं भिक्षा भी मांगकर जी लूंगा, ये यदि कोई दिए भी नहीं तो ऐसे ही मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपने सगे संबंधियों से युद्ध नहीं करूंगा। तो उसके अंदर भगवान क्या देख रहे हैं कि अर्जुन की विरक्ति नहीं है, आसक्ति है। अर्जुन आसक्ति दिखा रहे हैं और कहारी खाली वो ऊपरी सतह पर वो विरक्ति दिख रही है। तो ये दो प्रकार का जो अंधापन है ये बताया गया। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि इस भौतिक संसार में जो बहुत विरक्ति का भाषण देते हैं वो शास्त्र के आधार पर दे रहे हैं, या फिर कई शास्त्र को अलग कर कर कहते हैं कि बस मजा मस्ती करो, वो दूसरा एक्सट्रीम। तो यहां पर बैलेंस्ड अप्रोच भगवान बता रहे हैं। तो अब ये मोहांध और गुरु का इन दोनों में क्या संबंध है? तो गुरु की व्याख्या की गई है, गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। तो यदि अंधकार दूर करना है तो अंधकार कभी समय के प्रभाव से दूर नहीं होता। डार्कनेस कैन नेवर बी मिटिगेटेड सिंपली बाय द पैसेज ऑफ टाइम। कोई व्यक्ति ये समझे कि मैं जीवन जीता रहूं जीते रहूं और मेरे अंधकार, मेरे अंदर का जो अंधकार है वो अपने आप जीते जी दूर हो जाएगा जितना मैं जीऊंगा, नहीं। जैसे उदाहरण दिया है कि मान लो एक कमरा है, 10 साल से वो कमरा बंद है और उसके अंदर अंधकार है। तो आप जब उसमें प्रवेश करोगे तो 10 साल से अंधकार है, इसका अर्थ ये नहीं कि अब अंधकार बोर होकर चला जाएगा, बहुत हो गया अभी इधर रहे। जब तक वहां पर प्रकाश का प्रवेश नहीं कोई करवाएगा तब तक वो अंधकार दूर नहीं होने वाला। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये जो हमारे अंदर शास्त्र या आध्यात्मिक प्रति जो अंधकार है, इग्नोरेंस ऑफ अवर रियल सेल्फ, इग्नोरेंस ऑफ स्पिरिचुअल सेल्फ विल नॉट जस्ट गो अवे इफ वी सिंपली सिट एंड वेट फॉर द इग्नोरेंस टू गो अवे। वी हैव टू इनवाइट द लाइट। तो गुरु का अर्थ क्या है? मुख्य गुरु प्रकाश लाकर, इसलिए हम कहते हैं ओम अज्ञान तिमिरान धस्य। जो हम अंधेपन में हैं, तिमिरान धस्य ज्ञानांजन शलाखया, कि वो ऐसी शलाखा लेकर आए हैं ज्ञान की, ऐसी अग्नि जिसके द्वारा मेरा पूरा अंधकार वो दूर करेंगे। तो इसलिए यहां पर अब भगवान कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, जो भगवान को कहा गया है कि गुरु की भूमिका निभाते हुए अर्जुन जो कि मोह कलिलम घने जंगल में, मोह के घने जंगल में फंसे हुए हैं, तो कौन सा प्रकाश, ये प्रकाश क्या है? अब ठीक है, अंधकार तो हम समझ गए, लेकिन गुरु के हाथ में ये प्रकाश क्या है, कौन सा टॉर्च लाइट है? ज्ञान। और इसलिए भगवान यहां पर कह रहे हैं कि जो श्रवण करता है गुरु से, वो श्रवण से उसका अंधकार दूर होता है। लेकिन भगवान यहां पर अर्जुन को कह रहे हैं कि एक भौतिक श्रवण है और एक आध्यात्मिक श्रवण है। तो भौतिक श्रवण के विषय में भगवान कह रहे हैं श्रुतस्य श्रोतस्य, ऑलरेडी हर्ड येट टू बी हर्ड, दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान बोल रहे हैं भौतिक लेवल पर जो भी श्रवण कीर्तन चल रहा है, तथाकथित, क्या श्रवण कीर्तन चल रहा है आज, क्या सेंसेक्स का भाव है, उसका भाव कितना है, मार्केट वैल्यू क्या है, मेरे आहार निद्रा भय मैथुन के लिए क्या वस्तु उपलब्ध है, ये सब जो श्रवण चल रहा है और इसका कथन चल रहा है, ये चाहे आप सत्युग के भौतिक श्रवण को लीजिए और अब के 21st सेंचुरी कलयुग के भौतिक श्रवण को लीजिए, कोई अंतर नहीं। भगवान बोल रहे हैं चाहे आप ब्रह्मलोक में जाकर वो भौतिक श्रवण को सुनिए यदि चल रहा है तो, या पाताल लोक में जाकर सुनिए, वही चल रहा है। इसलिए हालांकि न्यूज़पेपर बोलते हैं, है ना, न्यूज़पेपर का अर्थ क्या है? इट शुड बी न्यू, है कि नहीं? न्यू न्यूज़पेपर। जैसे एक महानुभाव रोज घंटों घंटों न्यूज़पेपर में बिताते थे, कई लोग होते ना घुस जाते न्यूज़पेपर में, पता ही नहीं लगता है कौन से डेंस फॉरेस्ट में घुस गए, मोह कलिलम। तो न्यूज़पेपर पन्ने, आजकल तो न्यूज़पेपर इतने मोटे आने लगे हैं कि यदि आप सुबह से शुरू करो तो हो सकता है कि एक हफ्ता बीत जाए उसको पूरा कवर टू कवर, पेज टू पेज पढ़ना। तो ये महानुभाव रोज घुसे रहते थे, तो बीवी ने कहा काश में वो न्यूज़पेपर होती रोज तुम्हारे हाथ में होती। तो उसने भी कहा काश तुम न्यूज़पेपर होती रोज बदलता। और पुराने वाले को रद्दी में डालता। तो उसमें कोई न्यू नहीं है, बस वही डेट बदला हुआ है, नाम बदले हुए हैं, उसके अंदर जो इवेंट हो रहे हैं वही इवेंट चल रहे हैं। यहां पर किसी ने कोई कांड कर दिया, यहां पर कोई घोटाला, वो उधर उतने मरे, उधर बम फटा। तो भगवान कह रहे हैं कि इस भौतिक संसार, भौतिक धरातल पर एनीथिंग विच इज ऑलरेडी हर्ड एंड एनीथिंग येट टू बी हर्ड, देयर इज नो डिफरेंस। इसलिए गुरु वो क्या श्रवण कराते हैं एक शिष्य को, आध्यात्मिक संसार का समाचार। क्योंकि आध्यात्मिक संसार में हर एक वस्तु स्थिति और डायनामिक, क्योंकि सच्चिदानंद, इसलिए केवल उसी प्रकाश के द्वारा वो अंधकार, मोहरूपी अंधकार जीव का दूर हो सकता है। तो भगवान ने आगे इस श्लोक में निर्वेद ये शब्द इस्तेमाल किया है। तो निर और वेद से बना हुआ है निर्वेद। इसके दो अर्थ हमारे आचार्य कहते हैं, जानने की इच्छा से विहीन, क्योंकि जो उस स्तर तक पहुंच जाता है, जैसे कि यदि हम एक भौतिक उदाहरण लें, तो कोई व्यक्ति बहुत पढ़ लिख लेता है, इंजीनियर डॉक्टर बन गया, पीएचडी वगैरह कुछ कर लिया उसने, और उसके बाद उसको आप टिंकल दो, टिंकल पढ़ने के लिए कॉमिक, तो उसके अंदर उसको इतना कुछ इंडिफरेंट रहेगा। वो पहले वही जो पीएचडी कर चुका है टिंकल के पीछे भागता फिरता, टिंकल जानते हैं ना कॉमिक, इसके पीछे भागता फिरता। और उसके लिए यदि वो प्राप्त हो जाए तो पदम गच्छन तनामयम, परम पद प्राप्त हो गया, टिंकल मिल गई, सुपंडी कहा था, सुपंडी टिंकल के अंदर, बस वो उसके लिए एक महाजन बन जाता था। ही बिकम्स इनडिफरेंट व्हेन ही हैज समथिंग सो हायर। तो भगवान बोल रहे हैं कि केवल इस भौतिक संसार के जो अलग अलग ऊंचे स्तर हैं, सुनने कहने योग्य, केवल उसमें मत अटके रहो अर्जुन। तुम ये जो मुझे सुना रहे हो ना, तुमको लग रहा है कि इससे ऊंचा और कौन सा धर्मशास्त्र हो सकता है कि मैं इन्हें मारूंगा, ये फिर मुझे पाप चढ़ेगा, मैं नर्क जाऊंगा, और फिर कैसे। तो ये जो तुम्हारी तथाकथित वाणी है, ये वाणी केवल इस भौतिक संसार में ही घूम रही है, इट्स जस्ट रोटेटिंग विद इन द स्फीयर ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड। तो गो अभाव, इसलिए निर्वेद। अब मोह और उसका विपरीत यहां पर भगवान कह रहे हैं निर्वेद। मोह का विपरीत है विरक्ति या रेनन्सिएशन। तो यदि हम देखें कि भगवान ने दो विपरीत चीजें कह दी, अब यहां पर मोह जो कि अर्जुन मोह में थे, और फिर भगवान कह रहे हैं निर्वेद विरक्त हो जाओ, तो स्वाभाविक अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठेगा कि भगवान एक मिनट आप बोल क्या रहे हो, आपने पहले तो बताया कि मैं मोह रूपी जंगल में फंसा हुआ हूं, और फिर आप कह रहे हो कि मैं निर्वेद का पालन करूं, निर्वेद का अर्थ है विरक्ति का पालन कर रहा हूं, और उसके साथ साथ आप ये भी बोलते हो कि मैं युद्ध करूं, सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्टिंग। कॉन्ट्रडिक्टरी, विवादास्पद जिसे कहते हैं। तो विरक्ति और आसक्ति, तो ये थोड़ा फिलोसॉफिकल अभी डिस्कशन हमारा रहेगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पर भगवान ने एक बहुत ही सूक्ष्म मुद्दा, सटल पॉइंट जिसे कहते हैं, वो प्रस्तुत किया है। ऑल्दो इट इज सटल बट इट इज वेरी प्रोफाउंड। तो यदि हम अब कुछ उदाहरण लें, ये हो सकता है जो यहां पर आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, कोई व्यक्ति बोले कि मुझे एक्सरसाइज करना है, पसीना नहीं आना चाहिए, देखना ट्रेनर को बोल रहा है वो जिम में, एक्सरसाइज मैं करूंगा, मेरे को सब 3 घंटा जो भी 1 घंटा एक्सरसाइज करना, एक पसीने की बूंद नहीं टपकनी चाहिए। तो यहां पर एक्सरसाइज विदाउट स्वेटिंग अपीयर्स टू बी कॉन्ट्रडिक्टरी, इट कॉन्ट्रडिक्ट्स ईच अदर। अच्छा, वेट लॉस प्रोग्राम चल रहा है तो आजकल देखो, भगवान जो अर्जुन को यह सिद्धांत बता रहे हैं कि निर्वेद के द्वारा मोह रूपी जंगल से बाहर निकलना, आजकल क्या क्या एडवर्टाइजमेंट होते हैं, लूज योर वेट इन 3 मंथ्स विदाउट फास्टिंग बोलते हैं ना, कि कोई आपको फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है, कार्यक्रम आपका चलते रहने दो। और पता नहीं, तो यहां पर जैसे हमारी यहां महिला गई डॉक्टर के पास कि मुझे वेट लॉस करना है, डॉक्टर ने पहले पूछा आपका डाइट बताओ, दिन में बस ब्रेकफास्ट में 6 पराठे होते हैं। रुको रुको, ब्रेकफास्ट ही यहां तो किलर है। तो डॉक्टर ने पूरा डाइट लिख के दिया कि ये रॉ फूड, ये सैलड, ये फ्रूट, ऐसे ऐसे सब लिख के दिया। तो उसका प्रश्न क्या था, अच्छा ये खाने के पहले खाना बाद में खाना है? तो इस भौतिक संसार में प्रवृत्ति क्या है, भगवान वो प्रवृत्ति को स्क्रैप कर रहे हैं। हमारी प्रवृत्ति ये है कि हमको वेट लॉस भी कराना है लेकिन फिस्टिंग भी चलता रहना चाहिए, है ना। इसे सब इसी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट है कि हाँ, लेकिन ये आपको प्रॉब्लम नहीं है, नो आफ्टर इफेक्ट्स, नो दिस, यू नो, ऑल हर्बल सब बता देते हैं पहले। लेकिन उसको आध्यात्मिक तरीके से जो आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं, उसको यदि हम समझें, भगवान भी वही सिद्धांत बता रहे हैं। क्या सिद्धांत बता रहे हैं? कर्मा विदाउट रिएक्शन। कोई बोले है ऐसे थोड़ी हो सकता है, इट इज लाइक फायर विदाउट स्मोक, इफ देयर इज फायर स्मोक हैज टू बी देयर। नहीं, भगवान बोल रहे हैं वो भी संभव है। तो यदि ये प्रश्न पूछे, कैन देयर बी कर्मा विदाउट इट्स रिएक्शन, क्या ऐसे कर्म हो सकते हैं कि जिनका कोई परिणाम न हो? तो हमने 2 उदाहरण लिए, एक्सरसाइज विदाउट स्वेटिंग, वेट लॉस विदाउट फास्टिंग, वो साधारणतः संभव नहीं। तो अब यदि हम ये पूछें कि क्या कर्म, हर एक प्रकार के कर्म हमें बांधते हैं या कुछ कर्म हमें नहीं बांधते और कुछ बांधते हैं कर्म फल में, इज इट अ स्टैंडर्ड स्टेटमेंट और इज इट अ रिलेटिव स्टेटमेंट, कर्मा विदाउट रिएक्शन? क्या कहोगे? इज इट ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट और सब्जेक्टिव स्टेटमेंट? जैसे एक साधारण सा उदाहरण श्रील प्रभुपाद दिया करते थे, एक सैनिक भारत के बॉर्डर पर शत्रु को 1000 शत्रु को मार डालता, परमवीर चक्र, वही आता है अंदर अपने देश में 10,000 लोगों को मारता है अपने ही देश के, कौन सा चक्र मिलेगा? वो वाला आटे की चक्की, वो पिसो क्यों? एक ही कर्म है मारने का, इधर तो ज्यादा किया उसने थोड़ा एक्स्ट्रा, उधर 1000 को मारा था, एक परमवीर चक्र मिला, इधर 10,000 को मारूं। तो प्रभुपाद ये उदाहरण दिए कि कर्म वही होगा लेकिन उसके कुछ नियम हैं, जब उन नियमों का पालन होता है तब जाकर वो कर्म का कोई रिएक्शन नहीं। तो अब यदि हम पहले के भी उदाहरण लें कि जब कोई अपना वेट लॉस कराने के लिए कहीं पर जाता है तो वो जो भी डाइटिशियन वगैरह वो डाइट देते हैं, ये नहीं कहते कि अब बस जिंदगी भर का आपने खा लिया है अब उस पे जियो, बहुत फ्यूल भर लिया हो गाड़ी में, नहीं, वो डाइट देता है डॉक्टर। इसे डाइट एक वो एक्रोनिम है, DIET, डेयर आई ईट दैट। लेकिन वो डाइट किस प्रकार का होता है कि जो उसके वेट को कम करे, उसके वजन को कम करे, उस प्रकार का डाइट। तो वैसे ही भगवान यहां बता रहे हैं कि अर्जुन तुम ये मत समझो कि तुम यहां से भागकर तुम ये लड़ने से बच जाओगे, ये न केन प्रकार न तुम्हारे जीवन में तुम योद्धा हो, लड़ाई तो होने ही वाली है, लेकिन यदि तुम मेरे निर्देश में ये करोगे तो धर्म तुम्हें परमवीर चक्र मिलेगा। और वही योद्धा, यदि वो एग्जाम्पल है, उस योद्धा को उसका कमांडर कहता है चलो शत्रु सामने खड़ा है फायर, और वो कहता है मैं कर्म लगेगा, पाप लगेगा, उसको मारूंगा, हत्या है तो कत्ल है, तो वो नहीं फायर कर रहा है, उसके वजह से उसका कोर्ट मार्शल होगा, डिसोबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडर। तो वही भगवान यहां पर अब बता रहे हैं। तो अब हम हमारे शास्त्र में जो आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी लगते हैं उसका अर्थ क्या है ये समझेंगे। जैसे कि एक है विपरीत वाक्य और एक है विरोधी वाक्य। तो विपरीत वाक्य को कहेंगे पैराडॉक्सिकल और विरोधी वाक्य को कहते हैं अंग्रेजी में कॉन्ट्रडिक्टरी। क्या समझ में आए, दोनों में क्या अंतर है? अंतर यह है कि जो पैराडॉक्सिकल जिसे कहते हैं विपरीत चीजें हैं, लेकिन वो विपरीत चीजें आपको एक ऊंचा सिद्धांत स्थापित करने के लिए बताई गई। जैसे कि इसलिए पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स में आपको मैं बताऊं कि पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स को सिद्ध करने के लिए शास्त्र में यह विधि बताई है अर्थापत्ति। हमें एक ही पत्ती पता, चाय पत्ती, चाय पत्ती नहीं, अर्थापत्ति, पोस्टुलेशन जिसे बोलते हैं। तो अब दो विपरीत मुद्दे हैं उनको सिद्ध करने के लिए अर्थापत्ति का इस्तेमाल होता है। जैसे कि उदाहरण है कि मिस्टर रमेश दिन भर फास्टिंग कर रहे हैं, मिस्टर रमेश दिन भर फास्टिंग कर रहे हैं लेकिन उनका वेट इंक्रीज हो रहा है। अब ये क्या है, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट। बट इट अपियर्स टू बी कॉन्ट्रोडिक्टरी. अरे फास्टिंग कर रहा है दिन भर लेकिन वेट कैसे बढ़ रहा है उसका? तो इसे कैसे समझेंगे? हाउ विल यू रिकनसाइल दिस स्टेटमेंट? रमेश इज फास्टिंग फॉर द होल डे बट स्टिल इज वेट इज इंक्रीजिंग, इज ईटिंग एट नाइट. दैट्स हाउ उसका रिकंसिलिएशन होता है. तो उसे कहते हैं कि विपरीत चीजें. अब बहुत से फ्रेजेस किसी भाषा में ऐसे होते हैं जो आपस में वो विपरीत विरोधाभास लगता है उसमें, लेकिन जब उसका फाउंडेशनल प्रिंसिपल देखा जाता है तो वो एक्चुअली उसको और फोर्टिफाई करने के लिए वो विरोधाभास बताया गया. जैसे कि कोई बहुत टिप टॉप होके निकला है, आजकल कंटेम्प्रेरी भाषा में बोलते हैं ना, टिप टॉप होके बाहर निकलता है, कोई पार्टी में गया, शादी में गया, कोई अरे तो खतरनाक लग रहा है, तो है ना. अभी किसी को पता नहीं कि वो फ्रेज का मूड क्या है, इंटेंशन क्या है, है ना. तो दाऊद इब्राहिम भी खतरनाक लग रहा है और ये भी खतरनाक लग रहा है, दोनों में अंतर क्या है? तो अर्थापत्ति, अर्थापत्ति से समझना होगा. इसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना, ही इज फिल्दी रिच, ये एक फ्रेज है, फिल्दी रिच. अब उसको हिंदी में अनुवाद करो, सड़ा हुआ अमीर. ऐसे किसी का आप इंट्रोडक्शन करेंगे, सो वी हैव मिस्टर अंबानी, ही इज फिल्दी रिच, ये सड़े हुए अमीर है. तो यहां पर वो कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट है, लेकिन उसके इसलिए भगवान यहां पर मोह और निर्वेद ये आपस में कॉन्ट्रेडिक्टरी लग रहे हैं, लेकिन भगवान उसका मूड बता रहे हैं. जैसे कि हम ये जो स्टेटमेंट्स ले रहे हैं, बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसी स्थितियां आती हैं जिसके अंदर जब तक हम उसके कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझेंगे तब तक वो बात हम समझ नहीं पाएंगे, उसको पचा नहीं पाएंगे. इसलिए मोह का उल्टा निर्वेद नहीं भगवान बता रहे हैं, विरक्ति नहीं बता रहे हैं, मोह का विपरीत है प्रेम. और उसके अंदर भी अंधापन रहता है, शुद्ध प्रेम, भगवान के शुद्ध प्रेम में भी एक प्रकार का अंधापन रहता है, लेकिन वो अंधापन पॉजिटिव है. और मोह रूपी जंगल का जो अंधकार या अंधापन है वो नेगेटिव है. जैसे एक बहुत बड़े शायर हुए थे मिर्जा गालिब, तो उनके एक शागिर्द उनको एक बार मच्छर ने काटा, तो क्योंकि वो मिर्जा गालिब के शायर शेर मारने लगे, मच्छर ने काट लिया तो उसके ऊपर भी शेर उन्होंने मार दिया. तो उन्होंने एक ऐसा शेर मारा जिसके अंदर ये जो विरोधाभास है उसको रिकंसाइल किया. वो कहते हैं, मच्छर ने मुझे काटा, ये मच्छर का जुनून था. ये शेर की शुरुआत, मच्छर ने मुझे काटा, ये मच्छर का जुनून था, मैंने उसे खुजलाया है, मेरा सुकून था. तो जितने बैठे थे, वाह अरे इंशाल्लाह, तो मच्छर ने मुझे काटा, उसका जुनून था, मैंने उसे खुजलाया, मेरा सुकून था, चाह कर भी मैंने उसे नहीं मारा, क्योंकि उसके भी रगों में साला मेरा ही खून था. तो यहां पर अर्थापत्ति का इस्तेमाल हुआ है कि मच्छर काटा है लेकिन फिर भी उसका एक सुकून मिला है खुजलाने पे, नहीं तो नहीं मिलता ना. कई बार खुजली आती है तो जब खुजलाते हैं तो ज्यादा सुकून मिलता है. और गुस्सा आया मच्छर के ऊपर, है ना, लेकिन फिर भी मारा नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या देखा, बी पॉजिटिव। बोलते ना बी, सो ही वॉज पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो यहां पर भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं कि अर्जुन तुम इनको मारोगे और इनकी भलाई इस कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर मरने में लिखी है, और तुम जो इनकी भलाई करना चाहते हो युद्ध से भागकर, तो न तो तुम्हारी भलाई होगी न इनकी भलाई होगी। तो यहां पर ये पैराडॉक्सिकल जो बातें हैं मोह और निर्वेद को भगवान धीरे धीरे अर्जुन को उसको रिकंसाइल कैसे कर रहे हैं कि अर्जुन तुम सबसे पहले जानो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, अहितुकी प्रेम करता हूं, और तुम्हारा अहितुकी प्रेम यदि मुझ में होगा तो तुम ये युद्ध भी जो कि एक भीषण हत्याकांड माना जाएगा उसके अंदर बिल्कुल भी कोई रिएक्शन उस कर्म का तुम्हें नहीं लगेगा। इसलिए ये जो आजकल ये सारे मेंटालिटीज है ना कि शुगर फ्री दैट, कि हर चीज को आप एंजॉय करो लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स आपको भुगतने की जरूरत नहीं है, ये सब भगवत गीता से आ रहा है। ये जो प्रोपेंसिटी है ये आ कहां से रहा है, भगवत गीता से आ रहा है। जब भगवान ने कहा कर्मा फ्री कर्मा, तो इसलिए ये यदि कहें सिनलेस किलिंग, ये बहुत आपस में विरोधाभास इसमें माना गया, सिनलेस किलिंग ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसलिए ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट हालांकि यहां पर आपको समझ में आ रहा, लेकिन भगवान उसे एक दूसरे स्तर पर अर्जुन को समझाकर बता रहे हैं कि अर्जुन तुम इसके ऊपर उठो और श्रुतस्य और श्रोतव्य इन दोनों के ऊपर उठो। एक बहुत ही रेयर पिक्चर यहां पर आप देखो ध्यान से कि भगवान श्री कृष्ण हैं और वो घोड़ों को मसाज कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं और घोड़ों को घास खिला रहे हैं। दिख रहा है आपको, घोड़ों को घास खिला रहे हैं। तो ये महाभारत में एक प्रसंग हुआ कि जब अर्जुन युद्ध प्रारंभ हो चुका है, अब ये भगवत गीता हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया आपको, भगवत गीता के बाद महाभारत युद्ध में ले गए, तो महाभारत का युद्ध चल रहा है और अर्जुन अब युद्ध करते समय एक ऐसे ऐसे योद्धा थे अर्जुन के सामने कि अर्जुन जब तक कि उनको मारकर आगे नहीं जाते तो समय कम था। ये अपना जयद्रथ, जयद्रथ जो कि उसने वो ये ले लिया था कि सूर्यास्त से पहले यदि अर्जुन उसको खत्म नहीं करेंगे, अर्जुन ने यह व्रत लिया था तो सूर्यास्त से पहले उसको खत्म करना था। तो अब दुर्योधन ने किया क्या कि ऐसे ऐसे अक्षौहिणी सेना भेजने लगा। अक्षौहिणी सेना का अर्थ है करोड़ों की संख्या में एक एक अक्षौहिणी सेना भेज रहा है, क्यों, अर्जुन को बस उसका टाइम पास कराने के लिए। तो ऐसे ऐसे योद्धा आ रहे हैं कि अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंच ही नहीं देने दे रहे। तो फिर अर्जुन ने एक ऐसा शस्त्र निकाला कि एक बाण से एक अक्षौहिणी सेना खत्म, एक बाण से एक अक्षौहिणी पूरी सेना खत्म। तो अर्जुन वो तीर चलाते और एक अक्षौहिणी सेना वो एक बाण से खत्म होती, लेकिन अर्जुन ने देखा कि अर्जुन ने जिस रफ्तार से वो तीर छोड़ा वो टारगेट तक पहुंचने से पहले अर्जुन का रथ अगली अक्षौहिणी सेना के सामने खड़ा कर दिया। बिफोर अर्जुन एरो वुड रीच इट्स टारगेट द चैरियट ऑफ अर्जुन वॉज ahead of the target for the next Akshoyini Sena. तो ये किसका स्किल था? भगवान कृष्ण का. तो उस दिन जो भगवान इतनी रफ्तार से रथ को हांक रहे थे, तो शाम को संध्या के समय जब युद्ध उस दिन का समाप्त हुआ, तो भगवान अपना वो कैंप छोड़कर घोड़ों के पास गए और भगवान घोड़ों को साफ कर रहे हैं, उनको मसाज कर रहे थे और घोड़ों को घास खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं. और ये दृश्य जब वहां के जितने सारे सैनिकों ने, पांडवों ने, सबने देखा, तो तुरंत उनके मन में कौन सी छवि आई? भगवान श्री कृष्ण गोपाल के रूप में जो गोचारण किया करते थे वृंदावन में, गवों को घास खिलाया करते थे, उनको नहलाया करते थे. तो यहां पर भगवान ने अर्जुन के सामने, और महाभारत में वर्णन है, ही मेड वृंदावन अपीयर इन कुरुक्षेत्र. अब दोनों विरोधाभास लग रहे हैं ना यहां पे भी, वृंदावन इन कुरुक्षेत्र. तो भगवान इसके द्वारा ये भी दर्शाना चाह रहे थे कि अर्जुन तुम ये मत समझना कि मैं वृंदावन छोड़ के आया हूं और मैं यहां पर एक क्षत्रिय की भूमिका निभा रहा हूं, तो मेरे अंदर वो गोपाल के जो गुण हैं वो नहीं है, हैं वो अभी भी मौजूद हैं. तो भगवान अर्जुन को ये बता रहे थे कि मैं साइमल्टेनियसली पार्थ सारथी भी हूं और मदन गोपाल भी हूं, दोनों साइमल्टेनियसली, मतलब गो का पालक करने वाला. और फिर यदि हम देखें कुरुक्षेत्र इन वृंदावन, ये कैसे? ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर वृंदावन, लेकिन वृंदावन के अंदर कुरुक्षेत्र, ये केशी, ये भी एक घोड़े के रूप में आया था और भगवान ने इस केशी राक्षस को घास नहीं खिलाया. धरती चटवा दी, क्योंकि ये एक राक्षस के रूप में आया था. और जितने सारे राक्षस आए, तो इन विभिन्न राक्षसों को भगवान ने जब वध किया, इसलिए आप देखो वृंदावन में गोपियों के साथ भगवान विहार कर रहे हैं, अचानक शंखचूड़ नाम का कोई राक्षस आता है, तुरंत वहां पे खून खराबा, कत्लेआम चल रहा है रास लीला के बीच में. लेकिन फिर भी भगवान को वहां पर रास विहारी कहा गया. तो भगवान के अंदर ये गुण है कि भगवान के संपर्क में या भगवान के कनेक्शन में जो कुछ है उसके अंदर कोई विरोधाभास नहीं हो सकता. हालांकि बाहरी रूप से दिख रहा है दैट कृष्णा कुड मैनिफेस्ट वृंदावन इन कुरुक्षेत्र एंड कुरुक्षेत्र इन वृंदावन, बट बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा इट्स ऑल एब्सोल्यूट. ये तीन गुणों के परे उस स्तर पर है. तो इसलिए भगवान अर्जुन को यही प्रेरित कर रहे हैं, ये प्रेरणा दे रहे हैं कि अर्जुन मैं तुम्हारे रथ का सारथी बना हूं, मैं जो धर्म की स्थापना करने हर युग में आता हूं, और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि तुम ये युद्ध करो. हां, यदि और कोई बोलता तो यह प्रश्न उठ सकता था कि अर्जुन इतने लोगों को जो मारेंगे क्या उन्हें उसका फल मिलेगा या नहीं. तो फिर से यह प्रश्न यदि हम रखें, हाउ टू रिकनसाइल अ पैराडॉक्स, क्योंकि हमारे जीवन में भी ये, क्यों हम ये पैराडॉक्स और कॉन्ट्रेडिक्शन का चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में भी बहुत सी ऐसी स्थितियां आएंगी जहां पर दो विपरीत मुद्दे हमारे सामने प्रस्तुत होंगे या विरोधी लगेंगे हमें, तो कैसे हम उनको रिकनसाइल करें या रिजॉल्व करें। तो श्रीमद् भागवत में एक सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर, प्रथम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया, आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव यामयम द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम्। हमारे कई डॉक्टर यहां पर हैं तो वो इसको कंफर्म कर सकते। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वो गुड सोल डज नॉट अ थिंग अप्लाइड थेरेप्यूटिकली क्योर अ डिजीज विच वॉज कॉज्ड बाय दैट वेरी सेम थिंग। कि जिसके वजह से कोई बीमारी हुई उसी वस्तु से उस बीमारी को ठीक करना। आयुर्वेद में जो आयुर्वेद के हैं वो जान जाएंगे। कोई एग्जाम्पल, कांटे से कांटा निकाल। अच्छा, कांटा घुस गया है, दर्द कर रहा है, और कोई आपको गुलाब का फूल लाके दे, पंखुड़ी लाके दे, लो थोड़ा लगाओ उस पर, नहीं वो बोलेगा वो नीचे जो कांटा है वो दो निकाल के, उस गुलाब नहीं चाहिए अभी, वो कांटा चाहिए मुझे। तो ये जो सुंदर श्लोक श्रीमद् भागवत का, ये बता रहा है कि हमारे जीवन में हमें किसी चीज को छोड़ना नहीं है। जिस वस्तु व्यक्ति स्थिति के वजह से हम बंध रहे हैं उसी को इस्तेमाल कर कर हमें बाहर निकलना है। जैसे कि ताले की चाबी होती है, वही चाबी ताले को बंद भी करती है, ये नहीं कि दूसरी चाबी लानी पड़ेगी अब खोलने के लिए, है ना, वही चाबी ताले को बंद भी करती है, वही चाबी ताले को खोलती भी है। तो श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं अपने तात्पर्य में, इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं दूध का, कि ज्यादा दूध कोई जब पी लेता है तो ज्यादा दूध पीने के वजह से डायरिया उसका शुरू हो जाता है, लूज मोशंस हो जाते हैं ज्यादा दूध पीने के वजह से। तो ज्यादा दूध पी लिया तो फिर अब डॉक्टर कहता है कि अब दही खाओ, इतना दूध पी लिया, अब दही वो तो वही है, दूध ही तो है, क्या है। जैसे हमारे एक अंग्रेज आए थे, वो गए पंजाब, गए अमृतसर, अमृतसर की लस्सी पीने, तो वहां हलवाई की दुकान में देखा ऊपर नीचे लस्सी बना रहे हैं, बड़ा हलवाई मोटा सा बैठा हुआ है, तो अंग्रेज पूछता है, उसको समझ में नहीं आया लस्सी वस्सी क्या है, तो पूछता है व्हाट इज दिस, तो हमारे अमृतसर के वो उनको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बोलते हैं दही, यू नो दही, व्हाट इज दही। तो ये पूछते हैं अपने अपने पंडर से, पूछते हैं यार दही को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बोला सरदार हमको भी नहीं पता क्या बोलते हैं। तो वो अपनी भाषा में बताता है, दही मिल्क स्लीपिंग एट नाइट मॉर्निंग बिकमिंग टाइट। तो उसने कभी दही का ऐसा डिस्क्रिप्शन सुना नहीं, कहता है मिल्क स्लीपिंग एट नाइट मॉर्निंग बिकमिंग टाइट देन अप एंड डाउन टेक लस्सी। तो अब ये जो मरीज है, दूध इतना पीने के वजह से जो उसको डायरिया हो गया है, तो डॉक्टर कहता है वही दूध के अंदर एक विकार डालो, कल्चर जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको बोलते हैं पुटिंग कल्चर इन मिल्क एंड टर्निंग इनटू योगर्ट, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है कल्चर। तो वैसे ही हमारे जीवन में जब हम कल्चर का एक और अर्थ क्या है, संस्कृति, जब हमारे ये जो तथाकथित संस्कृति में हम रह रहे हैं उसमें एक आधुनिक आध्यात्मिक संस्कृति हम डालेंगे, दैट कल्चर ऑफ स्पिरिचुअल विजन और स्पिरिचुअल गाइडेंस, और फिर जब उस दूध को दही बनाकर हम उसका सेवन करेंगे, तब जाकर जो भी हमारी बीमारियां हैं, मोह रूपी घने जंगल में जो फंसे हुए हैं, तो वहां से निकलकर वन में जाना है, एक जंगल से निकल के दूसरे वन में प्रवेश करना है। कौन सा वन? वृंदावन। तो इसलिए ये आज के पूरे श्लोक का सिद्धांत भगवान यही बता रहे हैं कि अर्जुन, ये दोनों तुम्हें विपरीत विरोधाभास लग रहे होंगे, ये जो तुम्हारा मोह है, और मैं तुम्हें इस मोह से दूर होने के लिए लड़ने के लिए बोल रहा हूं, और साथ में ये भी बोल रहा हूं निर्वेद, लेकिन इसके अंदर यदि तुम मेरे लिए ये करोगे, जब मेरे लिए करोगे तो ये तुम्हारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए सबसे सहायक रहेगा। इसके विपरीत यदि हम ये उदाहरण लें, अंगूर हमारे सेहत के लिए अच्छे हैं, लेकिन लोग कई बार, नासिक में बहुत फेमस है, अंगूर कोई लेकर अलग तरीके से लेना प्रारंभ करें तो वही अंगूर, कोई कहे अरे मैं तो अंगूर ही तो ले रहा हूं ना, लेकिन उस अंगूर को उसी उसको सड़ा के गला के जो भी अलग अलग तरीके से, तो वो फिर आपका लिवर खराब करता है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि कर्म वही है, लेकिन तुम किस चेतना में कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, और उसका अंततः उद्देश्य क्या है तुम्हारे करने का, ये निर्धारित करेगा। इसलिए हालांकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करे कि ऐसा युद्ध लड़ो, और कैसा युद्ध अर्जुन ने लड़ा, 64 करोड़ योद्धाओं का वध, लेकिन ये 64 करोड़ योद्धा एक साथ एकत्रित आए और भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद को देखते हुए उन्होंने अपना शरीर त्यागा, और क्योंकि भगवान वहां पर मौजूद थे धर्म की स्थापना करने हेतु, तो अर्जुन हालांकि इन सबको मारे, लेकिन मारकर इन्हें भगवत धाम पहुंचाए। तो भगवान अर्जुन को अंततः यही बताए कि अर्जुन, इससे ज्यादा उनका हित चिंतक और कौन हो सकता था तुम्हारे अलावा, कि तुम्हारे मारने के वजह से, नहीं तो वो जो भी अपने कर्म में लगकर पता नहीं कौन से योनि में अपने आप को प्राप्त करवाते या कौन से लोक में जाते, लेकिन आध्यात्मिक जगत को ये लोग प्राप्त हुए, तो सोचो कि यदि तुम मेरे आदेशों को पालन करते हुए अपना जीवन जियोगे तो तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं निश्चित है। तो ये आज के श्लोक का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं, और फिर अगले श्लोक में अब भगवान अर्जुन को उसी चेतना में, कौन सी चेतना में, कि ये मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा, न कि मैं ये दुर्योधन को मारने के लिए, न विजय प्राप्त करने के लिए, न उन्हें पराजय करने के लिए, लेकिन मैं ये युद्ध लड़ रहा हूं धर्म की स्थापना करने के लिए। सो दैट इज द हाईएस्ट प्रिंसिपल विच कृष्णा इज एस्टैब्लिशिंग। तो इसलिए उन्होंने कहा श्रुतस्य श्रुतस्य, गो बियॉन्ड दैट विच यू हैव ऑलरेडी हर्ड एंड दैट इज येट टू बी हर्ड, गो बियॉन्ड दैट एंड जस्ट फाइट फॉर द अल्टीमेट कॉज ऑफ एस्टैब्लिशिंग धर्म। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी का कोई प्रश्न?